तो दोस्तों वीजा के फ्रंट पे खबर ये है कि न्यू साउथ वेल्स ने वीजा के क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किए हैं। वो क्या बदलाव हैं और उनके क्या असर हो सकते हैं, ये समझने के लिए हम बात कर रहे हैं चमनप्रीत से, जो माइग्रेशन एक्सपर्ट हैं और मेलबर्न में माइग्रेशन एजेंट के तौर पर काम भी करती हैं। चमन, आपका बहुत स्वागत है SBS हिंदी पर।
धन्यवाद विवेक।
तो चमन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि न्यू साउथ वेल्स ने जो ये नए क्राइटेरिया की बात कही है, ये क्या है?
जी तो विवेक, जब आप सबको याद होगा कि होम अफेयर्स ने इंटरिम एलोकेशंस हर एक स्टेट को एलोकेट की थी, तो न्यू साउथ वेल्स ने भी उन इन लाइन विद दैट अपनी 190 की इनवाइट्स खोली थी, जो कि हेल्थ, आईसीटी और इंजीनियरिंग ऑक्यूपेशंस के लिए थी जो न्यू साउथ वेल्स में रिसाइड करते हैं उनके लिए। कल जो अनाउंसमेंट आई है, तो अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाँ, न्यू सारी इंटरिम एलोकेशंस ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। सब स्टेट्स अब होम अफेयर्स के साथ काम करें अपनी नई एलोकेशंस के लिए, और नए क्राइटेरिया, नई सीट्स अनाउंस होंगी हर एक स्टेट के लिए। तो न्यू साउथ वेल्स ने कल अपनी 491 का क्राइटेरिया और कुछ प्रोग्राम अपडेट्स अनाउंस की हैं, और उन्होंने सबसे पहले तो यही कहा है कि वो अभी भी होम अफेयर्स के साथ वो अपनी प्लेसेस कंफर्म करने के लिए काम कर रहे हैं फॉर द रिमेंडर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। वीजा एप्लीकेंट्स को याद होगा, न्यू साउथ वेल्स पहले जो लास्ट ईयर 491 वीजा, और रादर इट वाज नोन एज 489 वीजा ऑपरेट करती थी, जो कि 15 नवंबर को सीज हुआ था और नए 491 वीजा ने उसकी जगह ली थी। तब जो न्यू साउथ वेल्स का सिस्टम था कि हर एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, सो न्यू साउथ वेल्स के अंदर कई रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज थी, तो और हर एक अथॉरिटी अपनी लिस्ट और अपना क्राइटेरिया सेट आउट करते थे और एप्लीकेशंस उनको जाती थी और वो एप्लीकेशंस को मैनेज करते थे। बाय द एंड ऑफ द ईयर जब नया 491 वीजा अनाउंस हुआ, तो वो उन्होंने क्लोज कर दिया था। और जब इस साल 15 जून को उन्होंने अपनी 491 सब क्लास खोली थी न्यू साउथ वेल्स के लिए, तब एक नई सेंट्रलाइज्ड नॉमिनेशन क्राइटेरिया 491 के लिए अनाउंस किया गया था। और उसके बाद ऑब्वियसली जब अब नए सेट ऑफ रूल्स अनाउंस हुए हैं, तो उसमें कई इंटरेस्टिंग चेंजेस हैं। तो न्यू साउथ वेल्स समवॉट ओल्ड मॉडल पे वापस जा रही है। उन्होंने कहा है कि जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, जैसे कि पहले वो अपनी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट डिटरमिन करती थी, वो वैसे ही वो उस मॉडल पे वापस जाएंगे। और जो सेंट्रल नॉमिनेशन क्राइटेरिया होगा, वो न्यू साउथ वेल्स डिटरमिन करेगी। और वो जो सेंट्रल क्राइटेरिया है, जो ओवरऑल क्राइटेरिया होगा जो न्यू साउथ वेल्स की 491 नॉमिनेशन के लिए, वो अनाउंस किया गया है। अब हम वेट करेंगे जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उन्हें अपनी लिस्ट अनाउंस करने का और प्रोग्राम्स को खोलने का। जो क्राइटेरिया न्यू साउथ वेल्स ने अनाउंस किया है अपने 491 वीजे के लिए, वो हर एक रीजन के लिए सेम रहेगा, हर एक आरडीए के लिए सेम रहेगा, और उसके अंडर 3 कैटेगरीज हैं। तो अगर आप एनी ऑफ दीज 3 नॉमिनेशन क्राइटेरिया में फिट करते हैं, तो आप इन न्यू साउथ वेल्स की 491 के लिए एलिजिबल होंगे। तो जो सबसे पहला नॉमिनेशन क्राइटेरिया है, वो है लिविंग एंड वर्किंग इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स। तो आपको लास्ट 12 महीने से रीजनल न्यू साउथ वेल्स में रहते हुए होना चाहिए, और अपनी सेम ऑक्यूपेशन या उससे क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में लास्ट 12 मंथ से काम करते हुए होना चाहिए इस नॉमिनेशन क्राइटेरिया में फिट करने के लिए। जो दूसरा क्राइटेरिया है, वो है रिसेंटली कंप्लीटेड स्टडी इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स। तो उसका मतलब ये है कि अगर आप रीजनल न्यू साउथ वेल्स में अपने पिछले 2 सालों में, सो 24 मंथ्स, प्रीवियस 24 मंथ्स में रीजनल न्यू साउथ वेल्स में पढ़ाई की हो विद कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो रीजनल न्यू साउथ वेल्स में बेस्ड है, और वो स्टडी 16 महीने की हो और क्राइकोस रजिस्टर्ड 92 वीक्स, सो दैट मीन्स इट मीट्स द ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट, और वो स्टडी आपकी ऑक्यूपेशन से क्लोजली रिलेटेड हो। सो से फॉर एग्जाम्पल आप कुक हैं या शेफ हैं, तो आपको कमर्शियल कुकरी अगर आपने पिछले 2 सालों में रीजनल न्यू साउथ वेल्स में रह के पढ़ाई की हो, 2 साल की पढ़ाई, 92 वीक्स की पढ़ाई 16 महीनों में कंप्लीट की हो, तो आप इस क्राइटेरिया में फिट होते हैं। तो जो तीसरा क्राइटेरिया है, वो है जॉब ऑफर इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स। इसका ब्रॉडर हेडिंग है लिविंग एंड वर्किंग आउटसाइड ऑफ न्यू साउथ वेल्स. रीजनल न्यू साउथ वेल्स के बाहर रह रहे हैं या काम कर रहे हैं तो आपको वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियाज में फिट होना जरूरी है. तो पहला है जॉब ऑफर इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स. तो उसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपने क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में आपके पास जॉब ऑफर लेटर है जो कि 12 महीने के लिए वैलिड है एंड 35 आवर्स पर वीक के लिए वैलिड है तो आप इस क्राइटेरिया में फिट करते हैं. जैसी बात है कि एम्प्लॉयर रीजनल न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड होना चाहिए और उनकी कंपनी वहां की रजिस्टर्ड होनी चाहिए. दूसरी है कि आपके पास एटलीस्ट 5 years ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस है. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइटेरिया, ये ऑफशोर एप्लीकेंट्स के लिए है. तो अगर जो एप्लीकेंट्स आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया रहते हैं उनके पास एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए आपकी नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन या क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में, तो आप इस सब कैटेगरी के अंडर 491 वीजा रीजनल न्यू साउथ वेल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और तीसरी कैटेगरी है family ties in regional New South Wales. अगर आपकी immediate family जो कि आप grandfather, grandmother, father, mother, brother or sister कोई भी इनमें से एक either permanent resident या citizen है New South Wales का या फिर 489 visa holder है, so ये तीन categories होना चाहिए and अभी वो regional New South Wales में रह रहे हैं और रीजनल न्यू साउथ वेल्स में लास्ट 24 मंथ्स से रह रहे हैं और अगर वो आपको नॉमिनेट करें तो आप इस क्राइटेरिया के लिए क्वालिफाई करते हैं.
एक तीसरा क्राइटेरिया जो इन्होंने क्या चेंज किए हैं ये भी जरा बता दीजिए कि जो पहले नहीं था.
ये जो फैमिली टाइज इन रीजनल न्यू साउथ वेल्स वाली कैटेगरी थी ये पहले एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं थी विवेक. तो ये एक क्राइटेरिया एब्सोल्युटली ओपन हुआ है. पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो ये भी थी कि आपको जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि प्रोग्राम जब 15 जून को खुला था और जब न्यू साउथ वेल्स ने अनाउंसमेंट की थी इस साल कि उनकी नए 491 क्राइटेरिया की, तब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि जो भी एप्लीकेंट अगर वो लिस्ट पे हैं उनकी ऑक्यूपेशन और वो उस ऑक्यूपेशन में डजंट मैटर पार्ट टाइम या फुल टाइम एनीथिंग, इफ वो लास्ट 12 मंथ से अगर रीजनल न्यू साउथ वेल्स में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं तब वो इस उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल थे. 23 जून तक एप्लीकेशन का टाइम था जो कि फिर क्योंकि इनके पास कुछ प्लेसेस अवेलेबल थी इन्होंने उसको और ब्रॉड कर दिया था कि आपकी ऑक्यूपेशन लिस्ट पे होनी चाहिए और आप they didn't mention a time frame, you should have been living and working in any occupation in regional New South Wales. तो वो थोड़ा सा easier हो गया था और फिर उस प्रोग्राम में कई लोगों ने अप्लाई किया था और कई invites भी issue हुई थी क्योंकि पहले प्रोग्राम काफी narrow था और बहुत ही limited places उसमें allocate हुई थी और जबकि जो 23 जून के बाद काफी उसको broad कर दिया गया था because उनकी seats available थी एंड उस प्रोग्राम को फिल किया गया था. अब जो ये वापस अनाउंसमेंट आई है इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड नॉमिनेशन क्राइटेरिया. अगर हम देखें तो आप तो ये जो दूसरी कैटेगरी जिसकी बात हमने की है कि अगर आप ऑफशोर हैं तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ नहीं था कहीं भी नॉमिनेशन क्राइटेरिया में. तो ये भी एक नया क्राइटेरिया है जो लिविंग एंड वर्किंग आउटसाइड ऑफ न्यू साउथ वेल्स अगर हम एक तरह से देखें तो पूरा ही न्यूली स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है.
मेरे ख्याल से न्यू साउथ वेल्स इस नए फाइनेंशियल ईयर में पहला स्टेट बन गया है जो आउटसाइडर्स को भी इनवाइट कर रहा है, ऑप्शन दे रहा है, राइट?
जी बिल्कुल विवेक, बिल्कुल. और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये रीजनल के लिए लिस्ट है, रीजनल की अनाउंसमेंट है. 190 के रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट होंगी जो कि अभी भी अनाउंस नहीं हुई हैं. ऑक्यूपेशन लिस्ट हर एक रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपनी होगी. बट जैसा कि आपने कहा, वो ये पहला स्टेट है जो कि एक्सप्लिसिटली आउटसाइडर्स के लिए एक कैटेगरी अनाउंस हुई है।
जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चमनप्रीत जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए।
धन्यवाद विवेक।